प्रिय मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 23 फरवरी 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, स्वागत करने के साथ ही मुझे आप सबको एक सूचना भी देनी है। हालांकि यह सूचना शुक्रवार को दी जाती है, लेकिन मुझे यह सूचना आपको बृहस्पतिवार को देनी पड़ रही है। और बृहस्पतिवार को इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि आपको मालूम है कि कल यानी कि 24 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इस पर यह राजपत्रित छुट्टी घोषित की गई है, यानी कि पूरे देश में छुट्टी रहेगी। और आप ये भी जानते हैं कि जो डेली ऑडियो लेक्चर है वह इसी सिस्टम को फॉलो करता है, इसीलिए फ्रेंड्स कल आपके लिए डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जा सकेगा। लेकिन आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलती रहेंगी और ठीक इसी तरह से योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल और जो आपको वीकली क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको उपलब्ध रहेंगे। यानी कि जो afis.com है उसको विजिट करने के लिए कुछ न कुछ सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने आज के टॉपिक पर। और आज के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वह बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट इस मायने में है कि मुझे लगता है कि कभी कभी आप लोग भी किसी एक टॉपिक पर या न्यूज एनालिसिस और अखबारों की बात सुनते सुनते शायद थोड़े से बोर हो जाते होंगे। और मैं ये भी जानता हूं मित्रों कि जब बोरियत महसूस होती है तो अपच की बीमारी हो जाती है। अपच का मतलब है कि फिर जो बात कही जा रही है वो बात उतनी समझ में आती नहीं जितनी समझ में आनी चाहिए, तो फिर क्या किया जाए। इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, निरसता, मोनोटोनस। तो निरसता को भंग किया जाए, उसमें कुछ सरसता लाई जाए। लेकिन मुश्किल यह है कि जो पढ़ाई का जो क्षेत्र होता है, अब उसमें कौन किसको नीरस कहता है, कौन किसको सरस कहता है, ये इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। अब क्या किया जाए। तो दोस्तों, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। आप जानते हैं कि या तो प्री के पेपर्स मेरे पास हैं या मेंस के पेपर्स मेरे पास हैं। मेंस के पेपर में कभी आपको फोर्थ पेपर दिखाई दे जाएगा जो थोड़ा सा एथिक्स एप्टीट्यूड का पेपर होता है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कभी निबंध जैसा पेपर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब जो जनरल स्टडीज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन पेपर्स को आधार बना करके तो हम लोग बात करते ही हैं। और खासकर जो न्यूज एनालिसिस का पूरा जो पैटर्न है, सच पूछे तो इन तीनों पर ही आधारित है। ज्यादातर इन तीन पेपर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो क्यों ना फिर इस निरसता को भंग करने के लिए फोर्थ पेपर को लिया जाए। तो मित्रों, आज मैंने फोर्थ पेपर का चयन किया है और फोर्थ पेपर के एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। ये फोर्थ पेपर 2013 से लागू किया गया है ना, एथिक्स का, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी का जो पेपर है। और सच पूछे तो बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत स्कोरिंग पेपर है और बहुत जरूरी पेपर है। इंटरेस्टिंग इस मायने में दोस्तों कि इसमें आपको याद करने जैसा कुछ नहीं है, याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इसमें जो इसका जो सिलेबस है, इसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सच पूछे तो उन सब को हम जानते ही हैं, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते। अब जैसे मान लीजिए कि जनरल स्टडीज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर में तो हो सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसके बारे में आप एक लाइन भी न लिख करके आ सके, इतना फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो भी पूछे जाएंगे उन पर आप कुछ ना कुछ तो लिखने की वक्त रखते ही रखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, नैतिकता है और अंतरात्मा की आवाज है और चेतना है और भ्रष्टाचार है और नीति है और कानून है और आचरण संहिता है, इन पर कुछ न कुछ तो लिखा ही जा सकता है। आखिर में हमारा समाज है, हमारी सभ्यता है, नैतिकता है, घर में हमें सिखाया जाता है, दुनिया भर की कहानियां रामायण की, महाभारत की और पंचतंत्र की सुनाई जाती हैं, हमसे अपेक्षा भी की जाती है। हम एक अलग किस्म की संस्कृति और संस्कारों में पले बढ़े हैं, वो हमारी चेतना में है, उनको हम रोज व्यवहार में लाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। तो इसलिए इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग किस आधार पर है? स्कोरिंग इसलिए इस आधार पर है कि आप सब जानते हैं स्कोरिंग, जब आप जानते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो लिख करके आएंगे ना, और जब कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे तो बट नेचुरल है कि फिर आपको नंबर भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये स्कोरिंग भी बहुत है, इसीलिए आपने देखा होगा, मतलब पिछले अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देख लें जो स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं तो आपको फोर्थ पेपर में बहुत अधिक मार्क्स मिलेंगे उनको, मतलब जो जनरल स्टडीज के चारों पेपर्स हैं उसमें सबसे अधिक नंबर मैंने ये महसूस किया है कि फोर्थ पेपर में होते हैं। जबकि फोर्थ पेपर के बारे में उनसे पूछे तो कहते कि नहीं, हमने तो कुछ तैयारी ही नहीं की, कोई खास तैयारी ही नहीं की, सब यही कहेंगे, और सच कह रहे हैं वो, इसलिए कि उसमें ज्यादा तैयारी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और वैसे भी आप इसका सेकेंड पार्ट तो आप जानते हैं कि पूरी तरह से केस स्टडी पर है, केस स्टडी की आप क्या तैयारी करेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत स्कोरिंग भी है और बोरिंग भी नहीं है, इसीलिए मैंने आज इसको चुना, क्योंकि पढ़ने में आपको मजा आएगा, बशर्ते कि आपको हिंदी की ठीक ठाक किताब मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि इस पर जो मटेरियल ज्यादातर जो अवेलेबल हो रहे हैं फोर्थ पेपर के ऊपर वो इंग्लिश के ट्रांसलेटेड है। तो जो प्रॉब्लम कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर को लेकर के स्टूडेंट महसूस करता था, लगभग लगभग उसी तरह की प्रॉब्लम मुझे इस फोर्थ पेपर में भी कहीं कहीं ज्यादातर दिखाई देती है। वो जरूर है लेकिन उसको आप लोग ओवरकम कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप बिना पढ़े, बिना याद किए, बिना सोचे, मतलब सोचे विचारे बिना नहीं, मतलब जिस पर आपने कोई बहुत गहराई से विचार नहीं किया है उसके भी उत्तर देने की स्थिति में आ जाते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा धैर्य रखें। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप फोर्थ पेपर को सॉल्व करें तो हिम्मत मत हारिए, बेचैन मत हो जाइए, परेशान मत हो जाइए। हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं नहीं इस पर तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, आपको लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। और ज्यादा अच्छा होगा कि आप अभी से ही फोर्थ पेपर को उठा लीजिए, 2013 से लेकर के अब तक हमारे पास चार क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, अनसॉल्व पेपर है, उसमें से ऐसे उठाइए, एट्रेंडम किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उसमें से एक क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि आप लिख लेंगे, भले ही आपको लिखने में एक क्वेश्चन के उत्तर के यानी कि 200 शब्द लिखने में आपको 2 घंटे लग जाए, डजंट मैटर, लगने दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेंगे, करेंगे ही, तो आप देखेंगे कि आपको हिम्मत आ जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि वहां आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए 2 घंटे नहीं मिलेंगे, वहां तो आपके पास 10 मिनट है केवल, लेकिन यही 2 घंटे रिड्यूस होकर के 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभ्यास की यही तो सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हमारी क्षमता को बढ़ा देती है, हमें उस लय में ले आती है और हमारे लिए उसको बहुत आसान बना देती है। आप चाहें तो मेरे इस ऑडियो को सुनने के बाद ही आप इसको करके देख, आजमा करके देख सकते हैं और आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं, आप देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो 2016 के फोर्थ पेपर में पूछा गया है, राइट। इसको मैं अब केवल आपको समझा रहा हूं, यहां कोई किताब नहीं है, कोई विद्वत्ता नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, नथिंग, केवल जीवन की वे बातें हैं जो हम सब कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, कोई ज्ञान बघारने वाली स्थिति नहीं है। और ये मान करके चलिए कि ज्ञान बघारने की यहां जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि उम्मीदवार के एप्टीट्यूड को टेस्ट करना, यानी कि यहां आप ही हैं, ये चौथे पेपर के केंद्र में अगर कोई व्यक्ति है तो आप हैं, जैसे कि सेकेंड पेपर के केंद्र में यदि कोई कुछ है तो संविधान है, थर्ड पेपर के केंद्र में अगर कोई है तो इकोनॉमी है, तो यहां अगर कोई केंद्र में है तो पूरी तरह से आप ही हैं, लेकिन किताबों से जब हम उन्हीं चीजों को पढ़ लेते हैं, किताबों में जान लेते हैं, तो थोड़ा हम सिस्टमैटिक हो जाते हैं, है ना, व्यवस्थित तरीके से लिख पाते हैं, सिलसिलेवार हो जाती है चीजें। तो किताब तो आपको पढ़नी ही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, चीजों को रटिए मत, केवल समझिए, और जो आपके अंदर है समझने के बाद उसी को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर आप इसको अब लागू करके देखिए। प्रश्न है, विधि एवं आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले दो उपकरण माने जाते हैं, ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके। यह स्टेटमेंट है। इसके बाद इस स्टेटमेंट पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ए है, चर्चा कीजिए कि वे इस उद्देश्य की किस प्रकार पूर्ति करते हैं, और बी है, उदाहरण देते हुए यह बताइए कि ये दोनों अपने उपागमों में से किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। यह दोस्तों, और इन दोनों के उत्तर आपको 150 शब्दों में देने हैं, यानी कि सिर्फ 75 शब्दों में। चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपकी सुविधा के लिए। लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट so as to make it conducive to civilized social existence. फिर ए में दिया है, discuss how they achieve this objective, and b, giving examples show how the two differ in their approaches. ये प्रश्न है मित्रों। अब आप देखिए कि इस को आप समझेंगे कैसे और इसके उत्तर आप निकालेंगे कहां से। आपने नहीं पढ़ा है, आप मान करके चलिए कि आपने नहीं पढ़ा है, आप लॉ के भी स्टूडेंट नहीं रहे हैं, आप एथिक्स के भी कोई लॉजिक फिलॉसफी के भी स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट तो हैं और ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हो जाने का मतलब ही अपने आप में एक सभ्य नागरिक बन जाना है। सभ्य नागरिक आप बन चुके हैं, और इसमें क्या कह रहा है देखिए कि ये जो विधि कानून और एथिक्स आचार नीति, ये दो ऐसे चीज हैं जो व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करते हैं, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, हमारे कंडक्ट को नियंत्रित करते हैं। कैसे नियंत्रित करते हैं? जैसे मित्रों कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं उसका सिर फोड़ दूं, आपको गुस्सा आ रहा है कि आप उसके घर में आग लगा दें, किसी की मानहानि कर दें, किसी के घर में चोरी कर लें, मतलब गलत काम करें। कानून तो देखिए गलत के लिए ही बना हुआ होता है, तो अब जो है, अब सही काम करने वालों के लिए भी कानून होता है, लेकिन यहां जो बात कर रहा है कि यहां तो नियंत्रित करने की बात कर रहा है, तो मेरे अंदर ये जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, जो प्रतिशोध है, एक खतरनाक चीज है। इस तरीके से आप सभ्य समाज को बनाए नहीं रख सकते, समाज तो टूट जाएगा ना। समाज किस चीज से बनता है? समाज आपसी समझदारी, सहयोग, सामंजस्य, इन सब से बनता है, और जो ईर्ष्या है, क्रोध है, वो समाज को तोड़ने वाला है। तो अब मेरा ये जो व्यवहार है, मेरे अंदर ये जो भावनाएं उठ रही हैं, बुरी बुरी भावनाएं उठ रही हैं, नकारात्मक जो भावनाएं उठ रही हैं, इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? कानून। कानून कैसे नियंत्रित कर रहा है? इस रूप में कि यदि मैं किसी का सिर फोड़ता हूं तो मुझे सजा हो सकती है, किसी के घर में आग लगाता हूं तो मैं जेल जा सकता हूं, चोरी करता हूं तो ये हो सकता है, हत्या करता हूं तो फांसी पे चढ़ाया जा सकता हूं। तो देख रहे हैं आप, ये क्या है? कानून। तो कानून मेरे इस आचरण को नियंत्रित कर रही है, और इसी की वजह से ये जो सभ्य समाज है, देखिए एक सभ्य समाज है और दूसरा असभ्य समाज है, जंगली समाज है। मतलब यहां उस तरीके से जंगली कहने का मतलब नहीं कि जो जंगलों में रहने वाला समाज है, मतलब एक ऐसा समाज जो अपने तरीके से छोटे छोटे जो समूह, कबीले समूह हैं, तो उनको सभ्य समाज हम नहीं मानते। उनकी दृष्टि में वो सभ्य हैं, नो डाउट, और वो हैं भी, और उनके बहुत से रिचुअल्स तो परंपराएं ऐसी हैं जो वास्तव में सभ्य समाज भी उतने एडवांस्ड नहीं है, लेकिन अब हो गया है, समाज शास्त्र में इस तरह से विभाजन हो गया है, सभ्य समाज और असभ्य समाज। तो सभ्य समाज बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित किया जाए, और आचरण को नियंत्रित करने वाले दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला है कानून जो राज्य लागू करती है, दूसरा क्या है, आचार नीति एथिक्स जो समाज लागू करता है। आप देखिए कि बहुत से ऐसे हमारे कंडक्ट हैं जिसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है, या कह लीजिए कि कानून हमारे पक्ष में है लेकिन समाज उसके विरोध में है। आप समाज से विरोध करके आप नहीं जा सकते। हमारे बहुत से आचरण आप देखिए कि कैसे वो एक, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से मिलें तो उस नमस्कार कहें, चलिए अभी नमस्कार कहिए कहां कानून में कि आपको नमस्कार कहना ही है, यदि आप नमस्कार किसी को नहीं करेंगे, विश नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे तो उसका अपमान होगा और वो आप पर अपमान का दावा ठोक देगा, है कहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो ये कहां से आया है? ये आचार नीति है, इसी को आचार नीति, ये समाज से आया हुआ है। तो समाज भी अपने बहुत सी चीजों को लागू करता है, और आप अलग अलग समाजों में आप अलग अलग चीजें देखते हैं। हमारी शादी ब्याह की परंपराएं देख लीजिए, वो समाज से निर्धारित होते हैं। जाति में ही विवाह करना है समाज से निर्धारित, अनावश्यक रूप से अपने ही आप निर्धारित हो गई हैं। तो ये जो आचार नीति है जिसके बारे में हमसे उम्मीद की जाती है कि नहीं, एक जो सभ्य व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा भी मत कहिए, सभ्यता का देखिए पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति भी बहुत असभ्य हो सकते हैं और अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत सभ्य हो सकते हैं, है ना। तो संस्कारों की बात है, जो आचार नीति हम परिवार में रहते समाज में रहते तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, कानून मोटी मोटी चीजें मालूम रहती ही हैं। तो ये दोनों ही चीजें अब आपने देख ली कि किस तरीके से हमारे कंडक्ट को कंट्रोल कर रही हैं, है ना, ये कह लीजिए कि हमें मर्यादा में रख रही हैं, और मर्यादा में इसलिए रख रही है ताकि समाज का अस्तित्व बना रह सके, समाज लगातार चलता रहे, और एक सभ्य समाज, असभ्य समाज नहीं। अब उसमें दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट है कि चर्चा कीजिए कि वे इस उद्देश्य की किस प्रकार पूर्ति करते हैं। दोस्तों क्या मैं आपको नहीं बता चुका हूं कि किस प्रकार पूर्ति करते हैं? मैंने समझाने की जो प्रक्रिया दोनों की बताई कि किस तरीके से विश करने वाला एक उदाहरण दिया और दूसरा वो किसी के घर में आग लगा देने वाला उदाहरण दिया, इस तरीके से पूर्ति करते हैं, वो खत्म हो गई बात, 75 शब्द में लिख दीजिए। और नीचे क्या दे रहे हैं कि उदाहरण देते हुए बताइए कि ये दोनों अपने उपागमों में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार भिन्न है। जो विधि है वो राज्य द्वारा लागू किया जाता है, जो आचार नीति है वो समाज के द्वारा लागू किया जाता है ना, समाज में सभी आ गए, एक परिवार की नीति है, समाज की नीति है, सभी आ गए, सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है। दूसरी जो बड़ी भिन्नता है कि विधि के उल्लंघन पर आपको सजा दी जा सकती है, लेकिन आचार नीति के उल्लंघन पर आपको उस तरह की सजा नहीं दी जा सकती, समाज आपको उस तरह की सजा नहीं देगा, समाज ज्यादा से ज्यादा आपका बायकॉट कर देगा, आपको समाज से बहिष्कृत कर देगा। ठीक है, आप यहां से इस समाज से बहिष्कृत हो जाइए, दूसरे समाज दूसरी जगह चले जाए, अगर दूसरी जगह नहीं भी जाते वहीं रहिए ना, अलग थलग रहिए, जिसको हरियाणा जैसे राज्यों में कहते हैं कि हुक्का पानी बंद कर दिया, उसका भोजन पानी बंद कर दिया, मतलब उसको हमने बिरादरी से अलग कर दिया, या समाज क्या करेगा, आपकी आलोचना करने लगेगा यही, लेकिन वो आपको सजा नहीं दे सकता कि आपको इतना आर्थिक दंड दिया जाता है, ये गैर कानूनी होगा। ये दो मूलभूत अंतर हैं, खत्म हो गई बात। और आप देखेंगे कि इन दोनों को समझने और जानने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, और यहां किसी कोटेशन की भी जरूरत नहीं कि फलाने ने ये कहा है और उन्होंने दो अंतर बताए हैं और फलाने ने चार अंतर बताए, नॉट एट ऑल। आप कॉमन सेंस से ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा अच्छे होंगे। और सच पूछिए तो अगर आप अपनी तरफ से लिखते हैं, जिसकी भाषा आपकी है, समझ आपकी है, उदाहरण आपके हैं, नए उदाहरण हैं, तो आप देखेंगे कि स्कोर भी ज्यादा होगा, नंबर भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसमें आप ही हैं। वैसे भी आप देखें कि सिविल सर्विस के जो दूसरे अदर पेपर्स जो हैं जनरल स्टडीज के ही, उसमें भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि रट्टू तोता वहां फेल हो जाएगा, मतलब रट्टू तोता कुछ ज्यादा कर नहीं सकेगा, वो तो रटी हुई चीजें ही लिख सकता है और वहां रटी हुई चीजों की बहुत कम भूमिका रह गई है, वहां तो समझी हुई चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहां वो कमजोर पड़ जाएगा, और यहां रटी हुई चीजों का कोई अर्थ ही नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत बहुत प्यारा पेपर है, नया इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको लेकर के आप सब बिल्कुल परेशान न हो, बिल्कुल हताश न हो, इस पेपर को एंजॉय करें। उदाहरण के तौर पर मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दे दी है, और कभी मौका मिलेगा तो इस पर फिर बातें करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, लेकिन इजाजत लेने से पहले, 3 दिन का एक लंबा गैप है, 3 दिन की छुट्टियां हैं, और इन 3 दिनों की छुट्टियों के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपने सभी टीम के सदस्यों की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, और अपनी ओर से भी, कि ये 3 दिन आपके बहुत ही सुखद हों, बहुत ही ऊर्जावान हों। और कल वहां शिवरात्रि है, शिव ही नहीं है बल्कि वो महाशिव हैं, तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के चरणों में वंदना करते हुए आप सबको इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हम सबके चरित्र और चेतना को ऐसा बनाए रखे कि हम भी उस महा को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।